डॉक्टर प्रीति नमस्कार।
नमस्कार अनिता जी।
डॉक्टर प्रीति, आज आपसे एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करना चाहती हूँ। कोविड टाइम है, वैक्सीन की बात हो रही है। अगर कोई महिला गर्भवती है या कुछ प्लान कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में, क्योंकि अधिकतर जैसे हम जानते ही हैं कि ये उम्र 40 से नीचे की ही होगी, तो ऐसे में वैक्सीन को लेके जो असमंजस भी हैं, तो आप क्या बताना चाहेंगी इसके बारे में हमारे सुनने वालों को?
धन्यवाद अनीता जी। ये एक बहुत ही बहुत ये मुद्दा इतना जरूरी है, क्योंकि आपने जैसे कि देखा होगा कि कुछ लास्ट वीक्स में बहुत सारा कंफ्यूजन जो है वो पॉलिटिकल लीडर्स के डिफरेंट ओपिनियन जो टीवी में हम लोगों ने देखा है
जी।
तो ये एक आम जनता को बड़े असमंजस में डाल देती है कि हमें क्या करना चाहिए। और प्रेगनेंसी उसके ऊपर तो खैर थिंग जिसके बारे में लोग और भी डर जाते हैं। तो आपने अगर ये देखा होगा कि ये मुद्दा चल रहा है कि एस्ट्राजेनेका फाइजर क्या देना चाहिए लेस देन 40 ओवर 40, क्योंकि ये जो उन्होंने देखा कि देयर आर सम वो कुछ रिस्क हैं जो ब्लड क्लॉट्स के इन जो 40 से कम लोग हैं अगर उन्होंने एस्ट्राजेनेका लिया है। तो बिल्कुल आपके सही कहना है कि जो प्रेगनेंट वुमेन है वो ज्यादातर तो 40 से कम ही होंगी, तो ये लोगों को और असमंजस में डाल देता है। बट अभी लास्ट 7 जून को हमारे रॉयल ऑस्ट्रेलियन न्यूजीलैंड कॉलेज ऑफ ऑब्स्टेट्रिशियंस एंड गायनेकोलॉजिस्ट, जिसको कि हम रैंसकॉक कहते हैं, एंड अटागी जो है अटागी ग्रुप जो कि ऑस्ट्रेलियन टेक्नोलॉजी ऑफ एडवाइजरी ग्रुप ऑन इम्यूनाइजेशन, ऑस्ट्रेलियन टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप ऑन इम्यूनाइजेशन जिसको अटागी कहते हैं, इन दोनों ने मिलकर एक जॉइंट कंसेंसस रिलीज किया है जिससे कि काफी कुछ चीजें अब क्लियर हो गई हैं। तो इन्होंने ये रिकमेंड किया है कि प्रेग्नेंट वुमेन को रूटीनली फाइजर जो mRNA वैक्सीन है प्रेगनेंसी की किसी भी स्टेज में देना चाहिए, क्योंकि जो इसके बेनिफिट्स हैं वो रिस्क ऑफ COVID-19 इन्फेक्शन प्रेगनेंसी को आउटवे करते हैं।
अच्छा।
ये भी कहा गया है कि वुमेन जो कि हाई रिस्क एनवायरमेंट में काम करती हैं, जैसे कि दोज वुमेन हु आर हेल्थ केयर वर्कर्स या जो बॉर्डर प्रोटेक्शन में काम करती हैं या जो होटल क्वारंटीन में काम करती हैं, उनको वैक्सीन COVID-19 फाइजर वैक्सीन स्ट्रॉन्गली रिकमेंडेड है प्रेगनेंसी के किसी भी स्टेज में या वो अगर प्रेगनेंसी प्लान कर रही।
यहाँ पर एक और बात भी आ जाती है कि प्रेगनेंसी अगर वो प्लान नहीं भी कर रही हैं अभी इस समय, लेकिन हो सकता है कि कुछ महीनों में वो इसकी तरफ सोचें।
जी बिल्कुल।
तो फिर वहाँ पर, क्योंकि इस समय जो गाइडलाइंस आई हैं, जिम्मेदारी GPs पर आ गई है।
हाँ जी बिल्कुल अंजलि जी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। और ये अगर देखा जाए तो दिस इज नॉट फेयर हमारे जनरल प्रैक्टिशनर्स के लिए, क्योंकि वो अब किसी भी एक इंसान के ऊपर ये जिम्मेदारी नहीं दी जा सकती है, जबकि क्योंकि हमें पता है कि COVID-19 इन्फेक्शन नया इन्फेक्शन है। लेकिन जब हमें इस तरह के कॉलेज स्टेटमेंट्स रिलीज होते हैं, इनसे बहुत कुछ प्रैक्टिस में आसानी हो जाती है और GPs के लिए अब आसान हो गया है उनको ये सजेस्ट करना कि वुमेन जो कि प्रेगनेंसी प्लान कर रही हैं या प्रेगनेंट हैं, और स्पेशली जो हाई रिस्क हैं जिनको प्रेगनेंसी में डायबिटीज है, रेस्पिरेटरी कंडीशन है या ब्लड प्रेशर है, ओबेसिटी है, इनको वैक्सीन लेना बहुत जरूरी है। एंड अभी तक जितना रिसर्च है वो ये कहता है कि वैक्सीन लेने से जो एंटीबॉडीज कॉर्ड ब्लड में है उससे ये पता चलता है कि बच्चे को भी सम लेवल ऑफ प्रोटेक्शन बेबी को भी हम दे सकते हैं वैक्सीन लेने से। तो ये प्रेगनेंसी में जैसे हम सारी औरतों को फ्लू वैक्सीन रिकमेंड करते हैं, अब फाइजर COVID-19 वैक्सीन उसी तरीके से इट शुड बी रिकमेंडेड सारे प्रेगनेंट औरतों को। तो मेरे ख्याल से चूंकि ये ऑब्स्टेट्रिक कॉलेज ने ये स्टेटमेंट रिलीज किया है, इसलिए आई थिंक अब GPs को ये पेशेंट को कन्विंस करने में आसान हो जाएगा। और लुक, जो औरतें हाई रिस्क एरिया में काम करती हैं वो चाहकर अपना जो है जैसे अपना वर्क लो रिस्क एरिया में कर सकती हैं, जैसे कि पेशेंट कांटेक्ट कम हो या फिर छुट्टी ले सकती हैं या वर्किंग फ्रॉम होम, यू नो वो भी एक ऑप्शन है जो कि प्रेग्नेंट औरतों के लिए काफी रिकमेंडेड है और उनको हमें इनकरेज करना चाहिए अगर उनका वर्क परमिट करता है तो।
जी, तो यही कहेंगे कि आपकी सलाह तो यही रहेगी कि वैक्सीन तो लेना ही है, क्योंकि और वैक्सीन में अगर हम उन महिलाओं की बात कर रहे हैं जो प्रेग्नेंट हैं या जो प्रेगनेंसी प्लान कर रही हों, तो उनके लिए रिकमेंडेड तो यही रहेगा कि वो फाइजर ही लें, और जीपी जिसके लिए रिकमेंड करेंगे क्योंकि उनके पास में अब बिल्कुल स्पष्ट गाइडलाइन है,
तो और एविडेंस है
जी, तो इसमें तो कोई कन्फ्यूजन अब रहेगा नहीं। जो ये जो असमंजस की स्थिति बनी है, कम से कम एक सेक्टर के लिए तो वो बिल्कुल ही स्पष्ट है कि उनको फाइजर ही चाहिए।
जी हाँ, और ये इसलिए भी है क्योंकि जैसे कि हम लोगों ने बात अभी डिस्कस किया था कि ज्यादातर प्रेग्नेंट औरतें 40 से कम की एज ग्रुप में आएंगी, और चूंकि एस्ट्राजेनिका के थोड़े बहुत जो मिथ हैं कि वो ब्लड क्लॉट्स का रिस्क इंक्रीज करता है, तो प्रेगनेंसी इज अ कंडीशन जहाँ की ब्लड थिकन होती है, थ्रोम्बोटिक स्टेट है वो, इसलिए आप वो वैक्सीन हम रिकमेंड करते हैं जो कि कोई भी एडेड रिस्क जिसमें थ्रोम्बोसिस की ना हो। तो हमें पता है कि प्रेग्नेंट औरतों में जो है ब्लड क्लॉट्स का रिस्क 8 गुना बढ़ जाता है इन कम्पेयर टू यू नो नॉर्मल वुमन, तो इसीलिए हम वो फाइजर वैक्सीन जिसमें कि पता है कि ये कोई भी रिस्क थ्रोम्बोसिस का नहीं करेगा, ये रिकमेंडेड है। और दूसरी चीज ये भी है कि जो औरतें नहीं वैक्सीन लेना चाहती हैं अगर प्रेग्नेंट है, उनके लिए भी कुछ रिकमेंडेशंस हैं कि एक तो आप अपना वर्क प्लेस आप देखिए कि आपका कैसे सेफ वर्क प्लेस हो, आपको ट्रैवल कम करना पड़े, मास्क पहनिए, सोशल डिस्टेंसिंग, हैंड हाइजीन अच्छा मेंटेन करिए, और अगर आप नहीं लेना चाहते हो, अगर आपके कोई एडेड रिस्क फैक्टर्स नहीं है, तो मेरे ख्याल से ये एक्सेप्टेबल हो सकता है अगर वो सारी और अदर बाकी प्रिकॉशंस वो लेते रहें।
जी जी, ये तो बात बिल्कुल सही है कि जो वैक्सीन है वो कोई रामबाण तो नहीं है, उसके बाद में भी डर तो बना रहता है, और इसीलिए बार बार इस बात पर जोर भी दिया जाता है कि वैक्सीन के बावजूद आपने उन सब चीज़ों के बारे में ध्यान रखना है जो वैक्सीन से पहले रख रहे थे, जैसे आपने बताया है कि मास्क पहनना है, सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है और सफाई की तरफ ध्यान रखना है। डॉक्टर प्रीति, आपने बहुत अच्छी तरह से कम इस असमंजस को तो बिल्कुल ही दूर कर दिया है कि अगर कोई प्रेग्नेंट है या वो प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं तो उनको कौन से वैक्सीन की तरफ बात करना है, और जीपीस के पास में इसकी पूरी जानकारी भी है, तो कहीं भी कोई असमंजस की स्थिति नहीं बन सकती है।
दूसरी चीज, मैं एक और चीज कहना चाहूंगी कि ब्रेस्ट फीडिंग वुमेन में अभी इतना टेस्ट नहीं हुआ है, लेकिन ये देखा गया कि कोई कंसर्न नहीं है बच्चे की सेफ्टी में, तो ब्रेस्ट फीडिंग वुमेन को भी हम ये वैक्सीन रिकमेंड करते हैं, क्योंकि ये देखा गया है कि ब्रेस्ट मिल्क में भी कुछ एंटीबॉडीज पास हो सकते हैं वैक्सीन लेने से, क्योंकि बच्चे को प्रोटेक्शन करेगा, प्रोटेक्शन देंगे।
जी, तो ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि प्रेगनेंसी के बाद में बेबी आ चुका है और वैक्सीन चाहिए, तो उसके लिए भी यही रिकमेंड किया जाएगा। तो डॉक्टर प्रीति, आपके समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूंगी।
धन्यवाद अनिका जी, मुझे मौका दिया आपने कुछ चीजें क्लैरिफाई करने का, क्योंकि मतलब मैं समझ सकती हूँ कि आम पॉपुलेशन में कितनी ज्यादा इसमें असमंजस है और लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि हम किस दिशा में जाएं, क्या करें। धन्यवाद।
SBS रेडियो से डाउनलोड करने के लिए आपका धन्यवाद। हमारा पूरा कार्यक्रम आप कैसे सुने, इसके लिए sbs.com.au/hindi पर जाएं।